بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ انداز جہاں میں آج ہم ہندوستان کے خوردہ بازار میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے موضوع کا جائزہ لیں گے۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@sahartv.ir اور ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahartv.ir۔ تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ ناظرین، ہندوستان کے خوردہ بازار میں غیر ملکی سرمایہ کاری اور غیر ملکی کمپنیوں کو آنے کی اجازت دیے جانے کی خبر نے نہ صرف یہ کہ چھوٹے دکانداروں اور خوردہ بازار سے وابستہ افراد کو تشویش میں مبتلا کیا، بلکہ اس خبر کے سامنے آنے کے بعد ہندوستان کے تمام شہروں میں عوام بھی سڑکوں پر نکل آئے اور انہوں نے حکومت کے اس فیصلے کے خلاف زبردست مظاہرے کیے، اور اسی کے ساتھ پارلیمنٹ کی کاروائی بھی کئی دن تک معطل رہی۔ اس درمیان اگرچہ پارلیمنٹ میں اسٹینڈنگ کمیٹی کی جانب سے لوک پال بل پیش کیے جانے اور ٹیم انا کی جانب سے اس کو مسترد کیے جانے اور انا ہزارے کی ایک روزہ بھوک ہڑتال نے ہندوستان کی سول سوسائٹی اور میڈیا کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لی، مگر یہ مسئلہ اپنی جگہ پر بدستور باقی رہا، اور اس مسئلے کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہندوستان کی مرکزی حکومت میں شامل کانگریس کی بعض اتحادی پارٹیاں بھی اس کی مخالفت کر رہی ہیں، جبکہ بی جے پی کے زیر قیادت قومی جمہوری اتحاد اور بائیں بازو کی تمام پارٹیاں اور اسی کے ساتھ ہندوستان کے چھوٹے دکانداروں اور چھوٹے تاجروں کی یونین بھی اس کی مخالف ہے۔ ٹیلی فون لائن پر ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے ہندوستان کے سینئر تجزیہ نگار ظفر آغا صاحب سے۔ ظفر آغا صاحب، السلام علیکم جناب۔
جی وعلیکم۔
جناب، ہندوستان کے خوردہ بازار میں غیر ملکی سرمایہ کاری اور غیر ملکی کمپنیوں کو آنے کی اجازت دیے جانے کے بارے میں آپ کا تجزیہ کیا ہے؟
دیکھیے، یہ فیصلہ ہمارے وزیر اعظم منموہن سنگھ اس فیصلے سے ایک دن پہلے بالی کی ایک کانفرنس میں گئے ہوئے تھے، جہاں صدر اوباما سے ان کی بات چیت ہوئی، اس کے بعد لوٹتے ہی یہ فیصلہ ہوا۔ اس لیے میرا یہ اندیشہ ہے کہ اس فیصلے میں امریکہ کا بے حد ہندوستان کے اوپر دباؤ پڑا، اور اس کے دو اسباب ہیں۔ ایک، ادھر حال میں تجارت کے معاملے میں امریکہ ہندوستان سے ناراض تھا۔ آپ واقف ہوں گے کہ ہندوستان اور امریکہ کے درمیان نیوکلیئر ڈیل ہوئی تھی، لیکن نیوکلیئر ڈیل میں امریکہ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز مانگ رہا تھا تجارت کرنے کے لیے، وہ ہندوستان نے ابھی تک ان کو نہیں دیے، اس سے امریکہ ہندوستان سے کافی خفا ہے۔ دوسری، ابھی حال میں ہندوستان میں ایک ہوائی جہازوں کی ایک بڑی خرید فروخت ہوئی، اس میں بھی امید یہ تھی کہ امریکن کمپنیوں کو امید تھی کہ امریکہ کے ساتھ ہوائی جہاز امریکن کمپنیوں کے ہندوستان خریدے گا، ڈیفنس کے جہاز تھے، کئی سو کروڑ کا سودا تھا، مگر اس میں بھی امریکن کو کوئی بڑی تجارت دستیاب نہیں ہو سکی۔ اس وجہ سے امریکہ بہت سخت ہندوستان سے اس معاملے میں نا امید تھا، اور ہندوستان پہ بہت دباؤ تھا کہ آپ کچھ نہ کچھ امریکہ کو تجارت دیں۔ چنانچہ مجھ کو یہ خدشہ ہے کہ بالی میں جب صدر براک اوباما اور منموہن سنگھ کی ملاقات ہوئی تو ان پر دباؤ پڑا، اور انہوں نے آ کر فوراً جلدی میں اجلت میں یہ فیصلہ لیا، اور اس کا نتیجہ جیسا بھی آپ فرما رہے تھے یہ ہوا کہ نہ صرف ملک میں ایک ہنگامہ آرائی ہو گئی، بلکہ خود مرکزی اتحادی حکومت میں اتحادی پارٹیوں نے بغاوت کر دی۔ ممتا بینرجی کی پارٹی ترنمول نے کھل کر اس کی مخالفت کی، یہاں تک نوبت آئی کہ حکومت خطرے میں پڑ گئی، اگر پارلیمنٹ میں اس معاملے میں ووٹ ہوتا تو حکومت گر جاتی، لہذا گھبرا کر حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ابھی اس معاملے کو ٹال دیا جائے۔ یہ معاملہ ٹال دیا گیا ہے، لیکن ختم نہیں ہوا ہے جیسا آپ فرما رہے ہیں، مگر ہندوستان आप वाकिफ होंगे कि हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा वेस्टेड इंटरेस्ट है, जो सबसे बड़ा गिरोह है तिजारत का, वो यही रिटेल बाजार वाले हैं। हर नुक्कड़ पर, हर गांव में, हर चौराहे में, हर मोहल्ले में दुकानें हैं, और ये फिर हिंदुस्तान के आढ़त जिनको बनिया कहा जाता है, वो आढ़त के बनिए वाले, वो बहुत ही पुराना हिंदुस्तान का एक बिजनेस ग्रुप है, जो पतन इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, जिसकी हिमायतें आरएसएस और बीजेपी के साथ रही हैं, वो भी पीछे से इसकी बहुत सख्त मुखालिफत कर रहे हैं। मेरा अंदाजा ये है कि ये इतना आसान नहीं होगा हिंदुस्तानी हुकूमत के लिए इस फैसले को लागू करवा पाना। फैसला लागू होना मुश्किल है, और पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी। जैसा मैंने अभी अर्ज किया कि पार्लियामेंट में हुकूमत खतरे में पड़ गई थी, बाहर इसकी सख्त मुखालिफत है, इसलिए हुकूमत, मुझे लगता है कि इसको खामोशी से टालती ही रहेगी, जल्द अब इसका जिक्र होना मुश्किल है।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया जफर आगा साहब, लाइन पे मौजूद रहिएगा। और नाज़रीन, लंदन स्टूडियो चलते हैं, जहां बरसगीर के मुमताज दानिश्वर अली जाफर जैदी साहब मौजूद हैं। जैदी साहब का ताल्लुक पाकिस्तान से है। जैदी साहब, अस्सलाम वालेकुम।
जी, वालेकुम सलाम।
जैदी साहब, इस वक्त मौजू हमारी गुफ्तगू का हिंदुस्तान के खुर्दा बाजार में, रिटेल मार्केट में मगरबी कंपनियों की आमद और मगरबी सरमायाकारी है। मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर मगरबी कंपनियां तीसरी दुनिया के किसी मुल्क में दाखिल होंगी, तो उसके असरात वहां के मुआशरे पर और वहां के इक्तिसाद पर क्या पड़ सकते हैं?
जी, ये इसके तीन पहलू हैं।
जी,
एक तो इसका माशी पहलू है, इकोनॉमिक इसका एस्पेक्ट, उस पर नज़र रखनी चाहिए। दूसरा इसका सियासी पहलू है, और तीसरा इसका सोशल कल्चरल इसका एक पहलू है। अच्छा, पहली बात तो यह है कि जब आप कैपिटलिस्ट सोसाइटी या आलमी साम्राज्य के साथ रिश्ता इस्तवार करते हैं और अपनी मंडी को ओपन करते हैं फॉर कैपिटलिस्ट सिस्टम, तो उसके जो असरात हैं वो अच्छे भी आपको मिलते हैं, बुरे भी मिलते हैं। तो उसके लिए तो तैयार रहना चाहिए उन तमाम ममालिक को तीसरी दुनिया के, जहां भी वो अपने दरवाजे कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम के लिए खोलते हैं और इंपीरियलिज्म के साथ अपना एक रिश्ता जोड़ते हैं। अब हिंदुस्तान के जो बिलखसूस हिंदुस्तान के आज की जो सूरत हाल है, उसमें अगर हम देखें तो इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्लो हो गई है। 9% एक्सपेक्टेड थी, जो कि अब 7% पर है। जो FDI है वहाँ की, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो 30% कम हो गई है। उसके साथ ही इन्फ्लेशन 9% तक जा पहुँचा है। इंटरेस्ट रेट काफ़ी ऊंचा जा रहा है, और इसके साथ साथ जो यूरोप में डेफिसिट क्राइसिस है वो, और इंडिया के अपने अंदर जो करप्शन है, इसको मिलाकर जब आप देखें तो इंडिया की टोटल जो इकोनॉमिक ग्रोथ और जो वहाँ की इन्वेस्टमेंट है, उस पर बहुत गहरा असर पड़ा है। और जो लेटेस्ट फिगर्स हैं उसमें जो इक्विटी है इस वक्त फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, वो इस साल $530 मिलियन की है, जबकि पिछले साल 28.9 बिलियन डॉलर्स की थी। तो इतना बड़ा जो फर्क आया है, और वहाँ से इन्वेस्टर जो है अब इन्वेस्ट करने से घबरा रहा है, इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रही, तो वहाँ की इकोनॉमी का तकाजा भी है, वहाँ की हुकूमत की रिक्वायरमेंट भी है कि बाहर से इन्वेस्टमेंट आए। चुनाचे ये तीन कंपनियाँ हैं, वॉलमार्ट, टेस्को और फ्रेंच कंपनी है खैरा फोर, इन तीन कंपनियों को इंडिया में, भारत में इन्वेस्ट करने की इजाज़त मिली है। अब इजाज़त के ये है इकोनॉमिक रीजंस। इकोनॉमिक जो रीजंस यानी रिक्वायरमेंट है इंडिया की, उसमें तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की इस वक्त उनको ज़रूरत है। अब उसका है दूसरा पहलू, वो है सियासी पहलू। सियासी पहलू यूं है कि बीजेपी की जो अपनी बेस है वो है पेटी बुर्जुआ क्लास में, उसकी जो सियासी पॉलिटिकल बेस है वो दुकानदारों और जो मिडिल क्लास, पेटी बुर्जुआ की वो मिडिल क्लास जो तिजारत में है और जो दुकानदारी में है, वो उसका सियासी बेस है। इसके साथ साथ जो कोलिशन गवर्नमेंट है वो इस वक्त, जैसे पहले आगा साहब फरमा रहे थे, वो भी इससे नाखुश है, बेचैनी का इजहार हुआ है उसमें भी। अच्छा, कांग्रेस के अपने अंदर भी इस पर इत्तफाक राय नहीं है। तो ये हैं वो सियासी पहलू जिस पे इस वक्त वहाँ की जो पेटी बुर्जुआ क्लास की के प्रोटेक्टर हैं वो ये चाहेंगे कि ये बाहर से ये जो इन्वेस्टमेंट है ये ना आए, ताकि वहाँ की लोकल जो ताजिर है, बनिया है, वहाँ का पंसारी है, उसकी रोज़मर्रा की जो तिजारत है और दुकानदारी है उस पे असर ना पड़े। और इसको कैपिटलाइज करा रहे हैं जितने भी ये पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, और इस हवाले से वहाँ पर एक प्रोटेस्ट की शक्ल डेवलप हुई है। तीसरा पहलू है इसका कल्चरल पहलू। कल्चरल पहलू ये है कि जब ये बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है या ये कंपनियां आती हैं, तो इनके आने से एक तो वहाँ की जो मैनेजमेंट की सलाहियत है वो इम्प्रूव होगी, यानी इसके फवायद क्या हैं और नुकसान। दूसरा ये कि वहाँ पर जो 30% इस वक्त जो भारत की फ्रेश फूड है वो ज़ाया हो जाती है, चूँकि वो फूड शहरों तक आने में अभी तक भारत के पास उस तरह की एडवांसमेंट नहीं है। तो इसके बचने से फ़ायदा यह है कि वहाँ की कीमतें रोज़मर्रा की ज़रूरियात की जो ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो गिर जाएंगी, लेकिन साथ साथ वहाँ पर जो इन्फ्लुएंस है वेस्ट का कल्चरली, वो भी देहात तक उसका असर जाएगा। और उसका असर के दो पहलू हैं, जो पुराना अंदाज़ रहन सहन है उसमें तब्दीली आएगी, जो कि वहाँ की जो कंजर्वेटिव क्लास है उसको वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और जाहिर है जो किसान बेचारा जब वो शहर में आएगा या इन स्टोर्स में जाएगा तो वो देखेगा वहाँ एस्केलेटर्स भी हैं, टिल पर लड़कियाँ बैठी हैं, साफ़ सुथरा स्टोर है, एयर कंडीशनिंग उसमें चल रही है, तो पहले तो वो घबराएगा लेकिन ग्रेजुअली वो उसको एडॉप्ट करेगा। एडॉप्ट जब करेगा तो जो वहाँ की दकियानूसी पार्टियाँ, सियासी पार्टियाँ हैं या सियासी ग्रोह हैं, उनको माशरे की ये जो पॉजिटिव डेवलपमेंट है ये शायद उस तरह से सूट नहीं करती। चुनाचे इसमें कई मजहबी जमातें और वो तमाम जमातें जो माशरे को आगे जाने से रोकती हैं वो, और इसका जो सोशल कल्चरल आस्पेक्ट है उसको ये सब के सब एक्सप्लॉइट करेंगे। तो इस वक्त की जो भारत में सूरत है इस बाहर की इन्वेस्टमेंट के आने के तनाजुर में, उसमें इन दो पहलुओं की ये दो लहरें चल रही हैं और इनका आपस में टकराव है। वहाँ की इकोनॉमी की ज़रूरत है कि बाहर से इन्वेस्टमेंट हो, वहाँ की सियासी जो ग्रोह हैं वो वहाँ के पेटी बुर्जुआ क्लास को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अल्टीमेट क्या होगा, मैं समझता हूँ कि अल्टीमेट इसका एक यानी पहलू एक और एंगल से भी देखना चाहिए कि इसके साथ एक शर्त जुड़ी हुई है, और वो शर्त ये है कि ये स्टोर्स उन शहरों में जाएंगे जहाँ पर कम से कम 1 मिलियन की आबादी है, यानी 10 लाख अफराद जिस शहर में होंगे वहाँ पर ये स्टोर जा पाएंगे। और भारत में इस वक्त इस तरह के शहर गालबन 56 हैं। 56 शहरों में से कितने इसको एडॉप्ट करते हैं कितने नहीं करते ये अभी देखने की बात है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जैदी साहब। और क्या शमीम फैजी साहब से राबता बरकरार हुआ है शायद? हाँ शमीम फैजी साहब हिंदुस्तानी कम्युनिस्ट पार्टी के मरकजी रहनुमा है। शमीम फैजी साहब
जी,
जनाब खुर्दा बाजार में गैर मुल्की कंपनियों को आने की इजाजत देने के ताल्लुक से मनमोहन सिंह हुकूमत जो दलायल दे रही है उनके बारे में आपकी राय क्या है?
देखिए इस वक्त हमारे मुल्क में
जी
खुर्दा बाजार में गैर मुल्की सरमायाकारी की कोई जरूरत नहीं है
जी,
ये मुल्क की मईशत के लिए तबाहकुन साबित होगा। इसके कई पहलू हैं। सबसे पहली बात तो इस वक्त हमारे मुल्क में तकरीबन 11 करोड़ अफराद किराना बाजार या खुर्दा बाजार जिसे आप कह रहे हैं
जी
उससे वाबस्ता हैं, उनके लिए रोजी वो रोजी रोटी से महरूम हो जाएंगे। हुकूमत कह रही है कि वालमार्ट और इस किस्म की कंपनियों से आने से 1 करोड़ इजाफी रोजगार के मौके पैदा होंगे, लेकिन वो ये नहीं बता रही है कि 11 करोड़ जो बेरोजगार होंगे उनका क्या होगा। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि ये किराना दुकानदारों खुर्दा व्यापारियों इनकी बेरोजगारी का सबब बनेगी। दूसरी बात यह है कि इसका रास्त असर हमारे किसानों पर पड़ेगा, खासतौर से छोटे और मंझोले किसानों पर। वो इस तरह से कि जब एक मरतबा वालमार्ट जैसी कंपनियों का खुर्दा बाजार पर इजारा कायम हो जाएगा तो वो ना सिर्फ कीमतें फरोख्त तय करेंगी बल्कि कीमतें खरीद भी वही तय करेंगी
जी।
इसकी एक जिंदा मिसाल हमारे मुल्क में इस वक्त मौजूद है। यहाँ पेप्सी को लाया गया
जी।
पेप्सी ने आलू चिप्स बेचने के लिए किसानों को लालच दिया कि वो किसी और चीज की काश्त करने के बजाय आलू पैदा करें
जी।
जालंधर जो पंजाब का एक मशहूर मरकज है, जिला है, वहाँ बड़ी तादाद में किसानों ने गेहूं पैदा करना छोड़कर आलू पैदा करना शुरू किया। शुरू के कुछ सालों में पेप्सी कंपनी ने उन्हें आलू के अच्छे दाम दिए, लेकिन इस साल उसने सिर्फ 1 रुपए किलो से भी कम पर आलू खरीदने की कोशिश की, जिसकी वजह से किसानों को अपनी लागत निकालना भी मुश्किल है। अब जालंधर के किसानों ने धमकी दी है कि अगर हुकूमत ने उनकी मदद नहीं की तो वो अपनी आलू की काश्त को तबाह कर देंगे, लेकिन किसी भी हालत में पेप्सी को नहीं बेचेंगे क्योंकि वो उनकी लागत से भी कम दाम देना चाहती है। पंजाब की हुकूमत ने परसों ही ऐलान किया है कि वो फी किलो आलू के ट्रांसपोर्ट के लिए 1 रुपए की सब्सिडी देगी। तो गोया आप सरकार पेप्सी को सब्सिडी दे रही है किसानों की मार्फत से। उसके अलावा पंजाब में काश्त में तब्दीली होने से, उसकी नहज में तब्दीली होने की वजह से गेहूं की पैदावार कम हो गई है। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो मुल्क के कई इलाकों में काश्त की नहज यानी काश्त बदल दी जाएगी और इससे हमारी गजाई सलामती के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। किसान तो बेरोजगार होंगे ही, हमारे मुल्क के अवाम के लिए गजाई सलामती का खतरा पैदा हो जाएगा। तीसरी बात, हुकूमत के फैसले में ये कहा जा रहा है
जी
कि जो कंपनियां आएंगी उन पर यह शर्त आयद होगी कि वो 30% पैदावार छोटी कंपनियों से मंझोली कंपनियों से खरीदेंगे, लेकिन खुद हुकूमत के फैसले में ये बात शामिल है कि ये फैसला हिंदुस्तान मखसूस नहीं है, इंडिया स्पेसिफिक नहीं है, बल्कि वो दुनिया के किसी भी हिस्से से ये काम खरीद सकती हैं। और छोटी कंपनियों का तायुन किसी सरकारी पैमाने से नहीं होगा बल्कि इन मल्टीनेशनल कंपनियों को, कसीर कौमी कंपनियों को हक होगा कि वो खुद ही ये सर्टिफिकेट जारी कर लें कि हमने ये 30% माल जो है छोटी कंपनियों से खरीदा है। जाहिर है कि जो चीन जैसे मुल्कों में
جہاں سے وہ مال خریدیں گے اس کا مقابلہ ہندوستانی مصنوعات نہیں کر پائیں گی. اس کی وجہ سے ہماری چھوٹی صنعتیں اور منجھولی صنعتیں جو ہیں وہ بند ہونے کے کگار پر پہنچ جائیں گی. اس سے بھی کروڑوں لوگ بے روزگار ہوں گے. ایسی حالت میں حکومت نے یہ فیصلہ کیوں کیا؟ میں ابھی سن رہا تھا کہ اس کی سیاسی وجوہات بتائی جا رہی ہیں. سب سے بڑی سیاسی وجہ یہ ہے کہ جارج بش جب ہندوستان آئے تھے تب سے امریکی انتظامیہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ بھارت جو دنیا کی سب سے بڑی منڈی ہے اس کو کھول دیا جائے والمارٹ اور اس قسم کی کمپنیوں کے لیے. بارک اوباما بھی یہی کرتے کہتے رہے. ہلیری کلنٹن تو خاص طور سے اس پر دباؤ ڈالتی رہی اس لیے کہ سب جانتے ہیں کہ ہلیری کلنٹن پہلے والمارٹ کی ڈائریکٹر رہی ہیں, کروڑوں روپیہ سالانہ کروڑوں ڈالر سالانہ تنخواہ پاتی رہی ہیں, اور پچھلے صدارتی چناؤ میں جب انہوں نے ڈیموکریٹک پارٹی کی امیدواری کا دعویٰ کیا تو ان کی ساری چناؤ مہم کا انتخابی مہم کا خرچہ والمارٹ نے اٹھایا تھا. اور اب والمارٹ نے کہا ہے کہ اگر بارک اوباما ہندوستان کی منڈی اس کے لیے کھلوا دیں گے تو وہ ان کے انتخاب کا بھی خرچہ اٹھائے گی. اور یہی وجہ تھی کہ انڈونیشیا کے بالی میں جب منموہن سنگھ بارک اوباما سے ملے تو وہاں ان پر یہ دباؤ ڈالا گیا کہ اگر آپ ہندوستان کے مالیاتی شعبے یعنی بینک اور انشورنس کو نہیں کھول رہے ہیں تو کم سے کم خوردہ بازار کو فوری طور پر کھول دیں تاکہ والمارٹ اور اس قسم کی کمپنیوں کو ہمارے ملک میں مالز کھولنے کی اجازت مل جائے. ظاہر ہے کہ جب ان کا اجارہ ہماری منڈیوں پر قائم ہو جائے گا تو وہ قیمت فروخت اور قیمت خرید دونوں کا تعین کریں گی اور اس سے پیدا کنندگان اور صارفین دونوں کو لوٹنے کا ان کو موقع ملے گا. اس لیے بحیثیت مجموعی یہ فیصلہ ہمارے ملک کی معیشت کے لیے تباہی کا باعث بنے گا. اسی وجہ سے اس ملک کی پارٹیاں خاص طور سے بائیں بازو کی پارٹیاں پوری شدت سے اس کی مخالفت کر رہی ہیں. یہ سچ ہے کہ بی جے پی کے اپنے محدود مفادات ہیں, اس کا اثر ویپاریوں میں ہے اور وہ ان کی وجہ سے اس وقت پریشان ہیں. لیکن ہم یہ نہیں بھولتے کہ 2004 میں جب بی جے پی کی سرکردگی میں این ڈی اے کی حکومت تھی تو اس نے بھی یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہمارے خوردہ بازار کو ملٹی نیشنل کمپنیوں کی سرمایہ کاری کے لیے کھول دیا جائے گا. ایسی حالت میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ ان تمام پارٹیوں کا فیصلہ ہے جو اس ملک پر معاشی نو آزاد روی ان اکنامک نیو لبرلزم کی پالیسی تھوپنا چاہتی ہیں, اور ہم اصولی طور پر معاشی نو آزاد روی کو کسی بھی ملک کی معیشت کے لیے تباہ کن مانتے ہیں. خود یورپ کے اندر اگر آج عوام سڑکوں پر اترے ہیں تو وہ سرمایہ داری کے اس نئے روپ معاشی نو آزاد روی کے خلاف جدوجہد کے میدان میں ہیں, اور ہمارے ملک کے عوام اس تباہی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے.
بہت بہت شکریہ شمع فیضی صاحب, لائن پہ موجود رہیے گا. ظفر آغا صاحب
جی,
جناب مرکزی حکومت کا کہنا یہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا ہے ہمارے علی جعفر زیدی صاحب نے بھی کہ اس سے غیر ملکی سرمایہ آئے گا اور ہندوستان کی معیشت بہتر ہوگی. ہندوستان کے ماہرین اقتصاد کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟
جی سوری آخری جملہ میں نے نہیں سنا.
میں نے میرا سوال یہ ہے کہ اس بارے میں ہندوستان کے ماہرین اقتصاد کی رائے کیا ہے, اکنامکس کیا کہتے ہیں؟
جیسا علی جعفر زیدی صاحب فرما رہے تھے
جی,
یہ ملک اس وقت دو بڑے طبقوں کے درمیان, دو بڑے مفادوں کے درمیان اس بحث میں گھر گیا ہے. ایک طرف ہندوستان کے بڑے سرمایہ دار ہیں جن کے نمائندگی ایچ ڈی ایف سی بینک جیسے بینک کر رہے ہیں, انہوں نے بہت کھل کر کہا ہے کہ والمارٹ جیسی کمپنیاں اور خوردہ بازار میں ایف ڈی آئی کا آنا, زر مبادلہ کا آنا, اس کو ویلکم کیا ہے. उसी जानिब जो छोटे छोटा सरमाया पेटी बोर्जुआ जिसका नाम अभी जिसका जिक्र कर रहे थे अली जाफर जैदी साहब, वो जाहिर सी बात है कि इससे असरअंदाज होगा। वो ये नहीं चाहता कि ये सरमाया यहाँ आए। हिंदुस्तान का जो बड़ा बड़ा गिरोह है, चाहे वो मीडिया हो या बड़ी बड़ी सरमायादार हों या बड़े बैंक हों, उनके मफाद ये हैं कि इकॉनमी जो इस वक्त हिंदुस्तान में स्लो डाउन हो गई है वो दोबारा से उसमें कुछ कुवत आए, उसके लिए बाहर से सरमाया चाहिए, वो इस फैसले की तायीद कर रहे हैं। जबकि छोटा सरमायादार जो किराने वाला है, दुकानदार है, आगतिया है, जिसकी जो बीजेपी में जिसकी पकड़ है, वो ग्रोह इसकी सख्त मुखालफत कर रहा है। और हिंदुस्तानी माशी माहिरीन भी दो ग्रोहों में बट गए हैं। एक वो ग्रोह जो ग्लोबल इकॉनमी और फ्री मार्केट इकॉनमी और न्यू लिबरल इकॉनमी को का हामी है, वो इसके हक में है। और जो जो मुल्क के मफाद में बात करने वाले माहिरीन हैं, वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं। इस वक्त जैसा अली जाफर ज़हरी साहब फरमा रहे थे, हिंदुस्तान का माशरा, यहाँ की सियासी पार्टियाँ, यहाँ का के माहिरीन तमाम इस मामले पर इसमें उनमें एक दरार पैदा हो गई है। क्योंकि हिंदुस्तान पिछले तकरीबन 20 वर्षों से ग्लोबल इकॉनमी के साथ जुड़ा हुआ है, वो तबका जिसको ग्लोबल फ्री मार्केट से फायदा हुआ है वो इसका हामी है, और जिसको नुकसान पहुंचा है वो इसकी मुखालफत कर रहा है। एक दरार पैदा हो गई है हिंदुस्तान के सियासी और समाजी दोनों सतह से इस मामले में, और उसकी वजूहात अली जाफर ज़हरी साहब ने अभी आपके सबको बयान फरमाई।
जी बहुत बहुत शुक्रिया, लाइन पर रहिएगा। ज़हरी साहब, आपने गुफ्तगु जफर आगा साहब और शमीम फैजी दोनों की मुलाहिजा फरमाई, इस सिलसिले में हिंदुस्तान के बाज माहिरीन इक्तिसाद ने जो कालम लिखे हैं उन्होंने भी इस तरफ इशारा किया है कि इसमें कुछ रोजगार जरूर पैदा होगा लेकिन बेरोजगारी ज्यादा बढ़ेगी। शमीम फैजी साहब का कहना यह है कि गैर मुल्की कंपनियों के आने से 1 करोड़ रोजगार के मौके फराहम होंगे लेकिन 11 करोड़ अफराद जो हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो क्या ये फायदे का सौदा कहा जा सकता है?
जी, असल में इसको इक्तिसादी निज़ाम के दायरे में रहते हुए समझने की ज़रूरत है। जी। जब भी आप ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और मॉडर्न इकोनॉमी और न्यू लिबरलिज्म की तरफ जाएंगे तो उसके असरात बेरोज़गारी की शक्ल में भी आएंगे, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, उसके फवायद भी हैं और नुकसानात ज़्यादा हैं। बात यह है कि जो ज़राए पैदावार हैं उस पे किसका कंट्रोल है और तकसीम पैदावार किसके पास है और जो पूरी मार्केट है उस पे किसका कंट्रोल है। अब इसको अगर मैं यानी इकोनॉमिक टर्म्स में कहूँ तो ये कि अगर आपकी यहाँ एक फ्यूडल बेस्ड सोसाइटी है या थी या दुनिया में जहाँ कहीं भी, तो उसको जब वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जाती है तो उसके अपने असर उस पर आते हैं कि जो पैदावारी ज़राए हैं वो बदलते हैं, बेरोज़गारी भी आती है, लेकिन वक्त के साथ सरमायादाराना निज़ाम के अपने असरात, लूटमार का ये निज़ाम है, उसके असरात आना शुरू होते हैं। इत्तफाक़ से, बल्कि मैं कहूँगा फॉर्चुनेटली, भारत के पास ये मौका था और रहा कि वो फ्यूडल सोसाइटी से सीधा सोशलिस्ट सोसाइटी में चला जाता, जिसकी उन्होंने थोड़ी सी कोशिश भी की। और सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में इंसान के जो ये तबके हैं, बहुत अमीर और बहुत गरीब, ये पैदा नहीं होते, बल्कि कुछ ना कुछ ज़रूरत के मुताबिक इंसानों को मिलता रहता है और ज़राए पैदावार भी मुश्तरका होते हैं और उसके मफादात भी मुश्तरका होते हैं और उसके फ़ायदे भी मुश्तरका होते हैं। अब जबकि भारत ने यह तय किया कि उसने कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जाना है और सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम को पूरी तरह अडॉप्ट नहीं किया, तो उसके असरात तो फिर बेरोज़गारी की शक्ल में भी आएंगे, اس کے اثرات انفلیشن کی افراط زر کی شکل میں بھی آئیں گے. اور اگر انڈیا نے ایک کیپٹلسٹ سوسائٹی میں داخل ہو کر عالمی سامراج کا حصہ بننا ہے, چونکہ امریکہ کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ انڈیا چین کے مقابلے میں, اس کو امریکہ کا انٹرسٹ ہے, ویسٹ کا انٹرسٹ ہے کہ چین کے مقابلے میں بھارت کو کھڑا کیا جائے پولیٹیکلی بھی اور معاشی طور پر بھی, اور اس کا سسٹم جو ہے وہ ویسٹ کے کیپٹلسٹ سسٹم کے ساتھ اس طرح جڑ جائے کہ پھر بھارت کے لیے معاشی آزادی حاصل کرنا مشکل ہو جائے, تو اس میں یہ جو سیاسی باہر کی عالمی سامراج کو جو انٹرسٹ ہے بھارت میں, اور بھارت نے اپنا انٹرسٹ عالمی سامراج کے ساتھ جوڑ لیا ہے, اس میں پھر اس طرح کے نتیجے تو برآمد ہوں گے. بے روزگاری بھی آئے گی اور اس میں افراط زر بھی ہوگا, باہر کی انویسٹمنٹ آئے گی, باہر کا انٹرسٹ آئے گا, اور آپ کی جو منڈی ہے اس پہ الٹیمیٹلی ملٹی نیشنلز کا کنٹرول ہوگا, اور اس کے کنٹرول کے نتیجے میں روزگار بھی آئے گا اور بے روزگاری بھی آئے گی. اب یہ تین جو وال اسٹریٹ, ٹیسکو اور فرینچ کمپنی, ان کے آنے سے ان کا یہ اناؤنسمنٹ ہے کہ وہ 3 بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ کریں گے. اچھا, اور 1 کروڑ لوگوں کو جاب بھی ملے گا. اس کے فوائد بھی بتائے جا رہے ہیں کہ جو 30% وہاں کی فوڈ, جیسے میں نے پہلے عرض کیا, جو ضائع ہو جاتی ہے, ان کی ماڈرن ٹیکنالوجی, ماڈرن ٹرکس, جو ریفریجریٹڈ لاریز ہیں, اس میں وہ جب ان کے سٹورز تک آئیں گی تو جو کسان ہے اس کی جو بہت سی پیداوار ضائع ہو جاتی ہے وہ بچ جائے گی, وغیرہ وغیرہ. یہ ہیں جسٹیفیکیشنز. اصل بات یہ ہے کہ آپ اصولی طور پر عالمی سامراج کا حصہ بن کر اگر چین کے مقابلے میں آپ اپنے یہاں سرمایہ دارانہ نظام لانا چاہتے ہیں اور لا رہے ہیں, تو اس کے پھر نقصانات تو آپ کو برداشت کرنے پڑیں گے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ مل کر ایک ایسا مضبوط ریجن کو ڈیولپ کرتے جس میں ویسٹ آپ کے لیے کی مجبوری ویسٹ کی ہوتی, نہ کہ اس وقت ویسٹ جو ہے پورے زور سے آپ کے یہاں آ کر اور وہ دھرنا دے کر بیٹھنا چاہتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ راستہ جو اڈاپٹ کیا گیا 20 سال پہلے, اس کے جو دیکھیں, آپ اگر گندم بوئیں گے تو پھر گندم ہی کاٹیں گے نا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مکئی بو کر اور اس کے آپ فصل جو ہے وہ چنے کی شکل میں حاصل کریں, ایسے نہیں ہوتا. چنانچہ یہ اثرات تو ہوں گے. ریسسٹنس ہو رہی ہے انڈیا میں, ریسسٹ کریں گی وہاں کی جو اکنامک فورسز ہیں یا وہ طبقے جن پہ معاشی مفاد, ان کے مفاد پہ زد پڑے گی, تو وہ تو ریئیکٹ کریں گے. لیکن اور اس میں جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس کا پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گی. مگر بات یہ ہے کہ آپ بھارت کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ بھارت کو سبسرویئنٹ ٹو دی امریکن انٹرسٹ بنانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کو بھارت اس طرح کی قوم چاہیے یا ملک چاہیے جو کہ امریکہ کا غلام بنے؟ اگر یہ نہیں چاہیے پھر تو آپ کو قومی حوالے سے فیصلے کرنے ہوں گے نا. تو اس میں دونوں پہلو دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ کی نیشنل پرائیورٹی کیا ہے؟ آپ کی فیوچر میں آپ بھارت کو اور اس کی اگلی نسلوں کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ شمیم فیضی صاحب. جناب, اس وقت جبکہ سرمایہ دارانہ نظام خود زوال پذیر ہے اور ان تمام ملکوں میں اقتصادی بحران آیا ہوا ہے جہاں سرمایہ دارانہ نظام حاکم ہے, ایسے میں اپنی معیشت کو سدھارنے کے لیے سرمایہ دارانہ نظام کا سہارا لینا کس حد تک دانش مندی ہے؟
دیکھیے, ہمارے ملک میں پچھلے 20 سالوں میں معاشی اصلاحات کے نام پر اکنامک نیو لبرلزم کی جو پالیسی اپنائی گئی ہے اس کے خطرناک نتائج برآمد ہونے لگے ہیں. مثال کے طور پر یہ سرمایہ کاری کے تعلق سے بہت سی باتیں کہی جا رہی ہیں, لیکن سچائی یہ ہے کہ اس وقت اگر ہندوستان کے روپے کی قدر میں گراوٹ آئی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگایا تھا वो उसे धड़ाधड़ निकाल रहे हैं। 15 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में $4 बिलियन की सरमायाकारी को निकाला गया और उसे मुल्क के बाहर ले जाने के लिए डॉलर की तलब बढ़ी। जब डॉलर की तलब बढ़ी तो रुपए की कदर गिरने लगी और उसका नतीजा है कि आज तकरीबन 53.5 रुपए का $1 हो गया है। इसका भी हमारी मईशत पर मनफी असर पड़ रहा है। इससे हमारी एक्सपोर्ट की जो क्वालिटी, एक्सपोर्ट की जो मकदार है उसमें यकीनी तौर पर कमी आएगी, हम टिक नहीं पाएंगे। और इसकी वजह से जो हमारी एक्सपोर्ट पर मबनी छोटी सी नतें हैं वो पूरी तरह से तबाह हो जाएंगी। पहले ही मई 2008 में जब पहली आलमी कसाद बाजारी शुरू हुई उस वक्त ही हमारे मुल्क में पानीपत की टेक्सटाइल, लुधियाना की गारमेंट इंडस्ट्री, तमिलनाडु की अंडर गारमेंट इंडस्ट्री, सूरत की डायमंड कटिंग इंडस्ट्री, कश्मीर और बनारस के कालीन साजी की इंडस्ट्री, मुरादाबाद के पीतल के बर्तन की इंडस्ट्री, इन सब में इसका असर पड़ा और बड़े पैमाने पर फैक्ट्रियां बंद हुई, लाखों की तादाद में मजदूर बेरोजगार हो गए। लेकिन हमारी बदबख्ती ये है कि पिछले 10 सालों से जो लोग बरसर इक्तदार हैं उन्होंने माशी नौ आजाद रावी का चारा निगल लिया है और कुछ तो खुले आम, आज की हुकूमत के कुछ जिम्मेदार खुले आम अमेरिका और अमेरिका के के मालियाती सरमाए और उसके एजेंटों आलमी बैंक IMF इनकी नौकरी किए हुए, इनके मुलाजमत किए हुए लोग आज बरसर इक्तदार हैं और वो मुल्क के अवाम के मफादात से ज्यादा इनके मफादात पर ध्यान दे रहे हैं और इसी वजह से ये बहरान पैदा हो रहा है। इस बहरान का साफ नतीजा हमारे सामने है कि पहली मरतबा हिंदुस्तान में तकरीबन तमाम अहम सनती शोबों में, खिदमात के शोबों को छोड़कर, तकरीबन 5.5% की गिरावट आई है उसकी शरे नमू में। और अंदेशा ये है कि आने वाले चंद महीनों के दौरान हमारी शरे नमू मनफी भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। तो ये तो आलमी सरमायादारी का आम बहरान नहीं है बल्कि ये बैनुल अक्वामी मालियाती सरमाए का बहरान है और बैनुल अक्वामी मालियाती सरमाया सिर्फ दो चीजें जानता है, कम से कम पैसा लगाकर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना और दुनिया भर के मुल्कों के कुदरती वसायल को लूटना। और उसके लिए ही ये मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, बैनुल अक्वामी मालियाती सरमाए के एजेंट हैं। उन्होंने यूरोप को पूरी तरह से लूट लिया, यूनान को तबाह कर दिया, पुर्तगाल को तबाह कर दिया, इटली तबाह हो गया और यूरोप के सारे मुल्कों में इस वक्त हालत यह है कि वो कभी भी मालियाती तौर पर और माशी तौर पर दिवालियेपन की कगार पे पहुंच जाएंगे। इसलिए हमारे हुक्मरान अगर इस रास्ते पर चलते हैं तो उन्हें इस बात के लिए भी तैयार होना चाहिए कि हमारे अवाम फिर से कैप्चर दीवाल स्टेट तक महदूद नहीं होंगे बल्कि इससे सख्त कदम उठाने पर वो मजबूर हो जाएंगे।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया जफर आगा साहब।
जी
जनाब,
जी।
इसके सकाफती असरात क्या मुरतब हो सकते हैं?
देखिए, आपकी जिंदगी का एक हिस्सा यकीनन हिंदुस्तान में कटा होगा। आप ये ने अपने आपको ये जुमला आपकी काम जो अगर दोहराऊं तो आपको याद हो जाएगा कि आपके घर में किसी ने आपसे कहा, जरूर किसी न किसी स्टेज पे कहा होगा कि जाओ बेटा भाग कर मौत पड़ा उसकी दुकान से वो से चीनी और चाय की पत्ती और दाल और चावल ले आओ। हिंदुस्तान का माशरा, या खाली हिंदुस्तान कहना गलत होगा, फ्यूडल इकोनॉमी जिससे हिंदुस्तान नहीं निकला है, वो तमाम माशरे दुनिया के किसी भी खत्ते में हो और एशिया में बहुत जगह मौजूद थी, उन जगहों पर ये खुर्दा बाजारी महज एक माशियत ही नहीं बल्कि उसके कल्चरल वो है और वो जुड़े हुए हैं रोजमर्रा की के हिंदुस्तानी आवाम की जिंदगी से। चुनांचे वॉलमार्ट आता है तो जाहिर सी बात है कि जैसे जब पहली बार इंडस्ट्री आई थी, ये इंडस्ट्री आती ही आई जिस माशरे में भी आई उसने उसके पुराने कल्चरल असरात जो थे उनको बहुत गहरे स्तर से तबाह किया। हिंदुस्तान को भी वो सकाफती कुर्बानी देनी पड़ेगी और वो हिंदुस्तान जैसे पुराने तहजीबी माशरे के लिए आसान बात नहीं होगी। वो एक बहुत बड़ी क्राइसिस पैदा करेगी और उस वो क्राइसिस की झलक अभी आपने पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बाहर देखी। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में सकाफती सतह के ऊपर हिंदुस्तान उसके लिए तैयार नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में एक तजाद पैदा हो गया है। जैसा मैंने कहा, हिंदुस्तान के बड़े सरमायों में कर्जदारों के साथ, जो मल्टीनेशनल्स के साथ, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के साथ हैं, और छोटे सरमायादारों के बीच में जिनको पेटी बुर्जुआ कहा जाता है, जिनमें हिंदुस्तान के किराना वालों का, खुर्दा वालों का बहुत बड़ा हिस्सा शामिल है, हिंदुस्तान के आड़तियों का। ये हिंदुस्तान का बहुत पुराना वेस्टेड इंटरेस्ट है, सदियों पुराना वेस्टेड इंटरेस्ट है। इसने इसकी भी अगर हिंदुस्तान के बड़े सरमायादार की पकड़ है यहाँ के सियासी निज़ाम पर, तो इसकी भी पकड़ है सियासी निज़ाम पर। इसलिए इस मामले के ऊपर खुर्दा बाजारी में FDI और वॉलमार्ट जैसी कंपनियों के मामले पर हिंदुस्तान में सियासी, सकाफती, माशी हर सतह के ऊपर एक बड़ी कशमकश होगी और एक बड़ा स्ट्रगल होगा। ये हुकूमत के लिए इतना आसान नहीं होगा जितना हुकूमत समझ रही थी, और इसका अंदाजा गालिबन हुकूमत को हो गया और हुकूमत ने खायफ होकर इस मामले में पीछे कदम बढ़ाए। और जैसा आपने कहा कि सकाफती एतबार के ऊपर, तो ये जो तब्दीलियां आई हैं ग्लोबलाइजेशन की हिंदुस्तान के मेट्रोज में, बड़े शहरों में, दिल्ली बम्बई जैसे शहरों में, वो तब्दीलियां गांव तक आएंगी और उससे गांव भी असरअंदाज होंगे, जिससे बड़े सोशल क्राइसिस भी पैदा होंगे और हर किस्म का एक तजाद होगा जो हिंदुस्तानी माशरे के सामने होगा, और उसके लिए मेरे ख्याल से अभी ये माशरा तैयार नहीं है। इसलिए तो हुकूमत के लिए, जब किसी भी सियासी पार्टी के लिए, इस फैसले को लागू करवा पाना आसान नहीं होगा।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जफर आगा साहब। इसी के साथ हम शमीम फैजी और डॉक्टर अली जाफर जैदी के भी शुक्रगुजार हैं कि आज उन्होंने इस प्रोग्राम में हमारे नाजरीन को अपने नजरियात से आगाह किया। बहरहाल बाद लोगों का ये भी कहना है कि गैर मुल्की कंपनियां हिंदुस्तान के खुर्दा बाजार में आने के बाद पहले बेरोजगारी बढ़ाएंगी, मईशत तबाह करेंगी और इसके बाद हिंदुस्तान की तहजीब और सकाफत पर भी असरअंदाज होंगी, और सबसे बढ़कर ये कि बहुत से लोग ये खदशा भी जाहिर कर रहे हैं कि ऐन मुमकिन है कि बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान को अपने कब्जे में लिया और फिर बहुत अरसे तक हिंदुस्तान गुलाम रहा, गैर मुल्की कंपनियां भी अपना तसल्लुत इस तरह बढ़ाएं कि हिंदुस्तान तजारती और इकतसादी लिहाज से उसकी वाबस्तगी मगरिब से इस हद तक बढ़ जाए कि जिसको गुलामी का नाम दिया जा सके। प्रोग्राम के बारे में हमें आपकी राय का भी इंतजार रहेगा। हमारा ईमेल एड्रेस है andaz_jahan@thereteofsahartv.ir। इसी के साथ हम आपसे इजाजत चाहते हैं। खुदा हाफिज़।